अरमान का आदेश। रश्मि ने राधिका की सिचुएशन देखी और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है राधिका, ये सब क्या हो रहा है, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, अब आगे? अब राधिका जो कि पूरी तरह से टूटी हुई थी और रश्मि के तरह से पूछने पर वो अब खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि वो इस बारे में पहले भी रश्मि के साथ बातचीत कर चुकी थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने आंसू भरी आंखों से रश्मि को देखकर सारी बातें बताना शुरू कर दिया था कि कैसे सुमित बिल्कुल नहीं चाहता है कि उनकी अपनी कोई औलाद हो, और इसी बात को लेकर उनके बीच अक्सर बहसबाजी होती रहती है, और सुमित के इस बर्ताव से वो काफी ज्यादा दुखी और परेशान है। राधिका की इस बात पर रश्मि को झटका सा लगा और उसका चेहरा हल्का सा बदला। उस वक्त उसे सुमित पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। इससे पहले राधिका उसे रोकती, उससे पहले ही रश्मि गुस्से से दंदनाते हुए वहां से निकल गई। सुमित और आकाश जो कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे थे, रश्मि सीधा उनके पास जा पहुंची थी और उसने सीधा सुमित को कॉलर से पकड़ लिया था और उस पर भड़कते हुए बोली, आखिर तुम राधिका को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? हाँ, अगर वो माँ बनना चाहती है तो तुम उसे मना क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या क्या है? तुम राधिका को इतना इमोशनल टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बोलकर रश्मि सुमित को पूरी तरह से डांटने लगी थी। वहीं आकाश भी पूरी बात सुनकर हैरान था और अगले ही पल वो चिंतित आवाज में बोला, सुमित क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? तुम ज्यादातर मेरे साथ रहते हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात मुझसे डिस्कस करते हो, लेकिन इतनी बड़ी बात तुमने मेरे साथ डिस्कस नहीं की, ऐसा क्यों किया तुमने? आखिरकार हुआ क्या है? भले ही हमारे बीच कोई सगा रिश्ता ना हो, लेकिन हमने ये रिश्ते खुद चुने हैं, खुद बनाए हैं और एक दूसरे का सुख दुख में साथ दिया है, तो फिर ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या दुख है जो तुम्हें इस तरह से इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और राधिका के आंसुओं का कारण बनना पड़ा? क्या हुआ है, बोलो। आकाश के सवाल करने पर सुमित का सब्र का बांध टूट पड़ा। उसने आवाज ऊंची में आकाश और रश्मि को सीधा और सच्चा जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता, समझे आप लोग, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता, क्योंकि जिस वक्त वो कोमा से बाहर आई थी उसी वक्त उसकी डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि ज्यादा दिन कोमा में रहने की वजह से उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स काफी ज्यादा वीक हो गए हैं, और अगर राधिका फ्यूचर में किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जान को पूरी तरह से खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं कभी बाप नहीं बनूंगा। ये बोलते हुए सुमित का सीना कस गया और गला आंसुओं से रुंध गया। अब ये बात सुनकर रश्मि और आकाश दोनों ही पूरी तरह से चौंक गए थे और उनकी आंखें शौक से फैल गई थीं। अचानक उन्हें सुमित के लिए सिंपथी महसूस होने लगी। वहीं ये बात किसी और ने भी चुपके से सुन ली थी, वो कोई नहीं बल्कि राधिका थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। सुमित के कहे शब्द तीर की तरह राधिका के दिल में धंसते जा रहे थे और उसी वजह से उसके दिल में एक तेज टीस उठने लगी थी। उसका दिल अचानक दुख के सागर में गोते लगाने लगा था। कहाँ तो वो हमेशा इस बात को लेकर सुमित से झगड़ती रहती थी, लेकिन अब उसके मुंह से सच्चाई सुनकर राधिका के होश उड़ गए थे। वो लड़खड़ाते कदमों से अचानक उसके पास आई और हकलाई आवाज में बोली, क्या यही बात थी? इतना कहकर राधिका ने अचानक सुमित को एक चाटा मार दिया और जोर से बोली, क्या ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? क्यों? क्यों तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी? क्यों? क्यों तुमने चाहा कि मैं खुद को तुम्हारी नफरत की वजह समझूं? बोलो ना, जवाब दो। अगले ही पल आकाश ने रश्मि को चुपके से कुछ इशारा किया और उसके बाद वो दोनों तुरंत वहां से बाहर निकल आए। तब तक सुमित की आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसने आगे बढ़कर राधिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुमसे बच्चों की बात करने से बच रहा था। मुझे लगा अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा दिल टूटकर बिखर जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, और मैं बिना बच्चों के रह लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुमित की बातों ने राधिका की आंखों में उभर आए आंसुओं को जैसे सूखने पर मजबूर कर दिया था। राधिका को उस पर बहुत प्यार आया और अगले ही पल उसने उसे कसकर गले लगा लिया था। वहीं रश्मि और आकाश तुरंत एक साथ बाहर आए। चलते चलते आकाश रश्मि को गर्व से देखकर बोला, मानना पड़ेगा मेरी प्यारी बीवी ने कितनी आसानी से सिचुएशन हैंडल कर लिया, सचमुच तुम बहुत ग्रेट हो। ये बोलकर उसने रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया था। वहीं दूसरी ओर संजना ने अविनाश को उसके विला में आने के लिए कह दिया था और मीटिंग की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके बाद संजना अरमान के केबिन में चली आई और अपने लाल होठों से मुस्कुराते हुए वो अरमान से बोली, सर मुझे आपसे मीटिंग के बारे कुछ जरूरी बात करनी थी। आज आपकी मीटिंग आपके घर के पास ही है, तो वो मीटिंग आपके घर में ही शिफ्ट हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब हमें भी आपके घर के लिए निकलना चाहिए। अब जैसे ही आस्था ने संजना के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो इस पर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला। उसने कंफ्यूज होकर आईब्रोज काते हुए सोचा कि अभी अभी तो वे लोग ऑफिस आए हैं और इतनी जल्दी कौन सी अर्जेंट मीटिंग आन पड़ी जो ये अचानक से वापस से जाने के लिए कह रहे हैं। आस्था ने संजना के ड्रामेबाजी पर आंखें घुमाई और अरमान से पूछा, अगर आपके घर के पास पहले से ही कोई मीटिंग थी तो आप मुझे लेकर ऑफिस क्यों आए हैं? एक मिनट, लेकिन हमारे घर के पास तो कोई भी बिल्डर या कंपनी का ऑफिस मौजूद नहीं है, तो फिर आपकी मीटिंग वहां किसके साथ है? आस्था के कहे शब्दों को सुनकर अरमान ने आईब्रो चढ़ाई और आश्चर्य से सोचा कि इस लड़की को कैसे पता कि उसकी कंपनी का कोई भी कोलैबोरेटर उसके घर के आसपास नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल उसने खुद को संभाला और आस्था को घूरते हुए चिढ़कर बोला, चुप, एकदम चुप, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर वो संजना की तरफ एकदम से देखकर बोला, संजना, मीटिंग की पूरी तैयारी कर लो और हाँ, तुम भी हमारे साथ चलो। अरमान की आखिरी लाइन सुनते ही आस्था आंखें सिकुड़ गईं और उनमें गुस्सा चमका। उसने एकदम से सोचा, आखिरकार ये चुड़ैल हमारे साथ क्यों जा रही है? फिलहाल आस्था को ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट काम निपटाना था, इसीलिए उसने अरमान से कहा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे वॉशरूम यूज करना है। ये सुनकर अरमान ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। इतना कहकर अरमान संजना के साथ वहां से बाहर निकल गया। अरमान के जाते ही आस्था जल्दी से उठी और सीधा मॉनिटर रूम में चली गई। वहां जाकर उसने जल्दी से कल रात की फुटेज देखना शुरू कर दिया कि कल रात ऑफिस में क्या क्या हुआ था, और उसने स्क्रीन पर राजवीर जिंदल को देखा कि वो कितनी देर तक अरमान के साथ बैठा रहा, उनके बीच क्या क्या बातें हुई, अरमान ने राजवीर जिंदल को कैसे गले लगाया और कैसे राजवीर ने अरमान से कुछ पेपर्स पर साइन करवाए। ये सब देखकर आस्था का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप गया था। उसके चेहरे पर हैरानी ही हैरानी नजर आ रही थी। फिर उसने देखा कि कैसे संजना अरमान को लेकर वहां से चली गई। संजना की हरकतें देखते ही आस्था की आंखें कठोर हो गईं। उसके तन बदन में आग लग गई थी। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन वो चाहकर भी संजना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि अभी वो कोई गलत कदम उठाने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिससे अरमान की जान पर खतरा बने रहे। आस्था को पता था कि राजवीर जिंदल क्या क्या कर सकता था। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी एंटीडोट खोजना था, और वो अच्छी तरह से जानती थी
संजना के जरिए ही वो राजवीर के ठिकाने तक पहुंच सकती थी। इसीलिए वो संजना को अब तक अपने आसपास बर्दाश्त कर रही थी। आस्था को सिर्फ संजना के हर मूवमेंट पर नजर रखनी थी। फिलहाल देर ना करते हुए वो फटाफट से बाहर आ गई थी, और जैसे ही वो फटाफट कार के पास आई तो वैसे ही उसने देखा कि अरमान कार खुद ड्राइव करने वाला है, और इस वक्त संजना अरमान के साथ आगे फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। ये देखकर आस्था ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। संजना की ये हरकत उसका गुस्सा भड़काने के लिए काफी थी। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने अपना आपा खो दिया। आस्था ने झट से संजना की साइड का दरवाजा खोला और उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरने लगी। आस्था के इस बिहेवियर ने अरमान के गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी, और अगले ही पल उसने नाखुश होकर सोचा, आखिर ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अरमान ने अपने अंदर उमड़ रहे अजीब से गुस्से को दबाया और गहरी आवाज में आस्था से कहा, तुम जाकर पीछे बैठो। इस पर आस्था ने हाथ बांधकर बड़े ही एटीट्यूड से कहा, जी नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ तो मैं आपके साथ आगे बैठूंगी और ये सेक्रेटरी जाकर पीछे बैठेगी। आस्था की बात सुनकर संजना का शरीर क्रोध से भर उठा था, लेकिन उसे अच्छा लगा था कि अरमान ने आस्था को पीछे जाने के लिए कहा था। तब अरमान ने एरोगेंट वॉइस में आस्था को आदेश दिया, देखो, तुमसे जितना कहा है उतना करो, अभी संजना बैठ चुकी है तो तुम जाकर पीछे बैठो। इस पर आस्था ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल मासूम बनकर कहा, ठीक है, अगर आप मुझे नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाइए, लेकिन मैं जाऊंगी तो सिर्फ आगे बैठकर जाऊंगी, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आस्था को जिद पर अड़ते हुए देखकर अरमान का माथा झंझना उठा, लेकिन संजना पूरी तरह से गुस्से से कांप उठी थी, क्योंकि वो तो आस्था की बेइज्जती कराने के लिए उसे अपने साथ रघुवंशी मेंशन लेकर जाना चाहती थी। अगर आस्था ही अब जाने से मना कर देगी तो उनका बना बनाया प्लान फ्लॉप हो जाएगा। भला संजना ऐसे कैसे होने दे सकती थी? इसलिए वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मैडम, आप आगे बैठ जाइए। ये बोलकर वो उतर कर पीछे बैठ गई और खुद से बुदबुदाई, बस कुछ देर बात है, उसके बाद तो तुम्हारा खेल खत्म हो ही जाएगा। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराई। तभी अचानक आस्था के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर आस्था के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उसने अरमान को टेढ़ी नजरों से देखा और सोचने लगी, ओह, तो ये बात है, इसलिए इन्हें मुझे ले जाने की इतनी जल्दी है।
फिलहाल देर न करते हुए आस्था जल्दी अरमान के साथ कार में सवार हो चुकी थी। तब तक अरमान ने जल्दी से ग्रुप में एक मैसेज भेज दिया था कि घर के सब लोगों को रघुवंशी मेंशन लेकर जाओ। ये मैसेज मिलते ही सभी लोग हैरान हो गए थे। रौनक और मारिया को वो लोग अपने साथ नहीं लेकर जा सकते थे, इसीलिए उनका ख्याल रखने के लिए उन्होंने राधिका और वंशिका उनके पास छोड़ दिया। लेकिन अरमान ने मैसेज में स्पेशली लिखा था कि नानी माँ, दादी जी, अभिमान जी, आकाश, ध्रुव, सुमित सभी लड़के वहाँ मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अरमान आज सबके सामने आस्था की अच्छी खासी बेइज्जती करवाना चाहता था। इसीलिए सभी लोग अरमान के आने से पहले पहले वहाँ जमा हो गए थे। फिलहाल अब आस्था शांति से एक तरफ बैठ गई थी। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गई। शायद आज नहीं तो कल अरमान को उसके बारे में पता चलना ही था। ये सोचकर वो शांत रही। जल्दी रघुवंशी विला आ चुका था, जिसे देखकर आस्था हैरानी का नाटक करते हुए अरमान से बोली, ये तो रघुवंशी मेंशन है ना, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आस्था के मुंह से ये सवाल सुनते ही अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और एकदम से बोला, क्यों, क्या हुआ? जब तुम हमें त्योहार मनाने के लिए यहाँ लेकर आ सकती हो, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आ सकता? इतना बोलकर अरमान बिना आस्था जवाब सुने सीधा अंदर चला गया। अरमान का एटीट्यूड देखकर आस्था को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ था। तभी संजना आस्था को तंज भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही, अगर रघुवंशी मेंशन का असली मालिक यहाँ आ जाएगा तो तुम्हारा भेद खुल जाएगा? हाँ बोलो, जवाब दो। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से आस्था की ओर गोल गोल घूमने लगी थी, लेकिन आस्था ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मासूम सी शक्ल बनाकर घबराई आवाज में पूछा, संजना तुम कहना क्या चाहती हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? और तुमने यहाँ पर किसको बुलाया है? इस पर संजना रहस्यमय आवाज में बोली, अभी कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही अरमान वहाँ पहुँचा, वैसे ही आकाश उससे सवाल करने लगा, अरमान तुमने हम सबको इतनी जल्दबाजी में रघुवंशी मेंशन में क्यों बुलवाया है? इस पर अरमान एकदम से बोला, आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, आज मैं आप लोगों को इस लड़की का सारा सच दिखाना चाहता हूँ। जब से मेरी याददाश्त गई है, आप लोगों को लगता है कि इस लड़की ने घर की बागदौड़ अच्छी तरह से संभाल ली है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज और गोल्ड डिगर है। अरमान की अकड़ और घमंड भरी बातें सुनकर सब लोगों का चेहरा हैरानी से भर गया था। लेकिन इससे पहले कि दादाजी या नानी माँ अरमान को फटकारते, ठीक उसी वक्त उन्हें प्राइवेट जेट के रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी, और देखते ही देखते अविनाश अपने पावरफुल ओरा के साथ एंजल से साथ वहाँ पहुँच जाता है।